الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس میں کچھ مخلوق جو اللہ رب العزت نے بنائی وہ خاص ہے اور ان کو مکلف کہا گیا کہ یہ خاص ہیں اور یہ جواب دہ ہیں. اللہ رب العزت نے ان پہ شریعت کو نازل فرمایا اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اور اس مخلوق میں انسان خاص طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے. اب کیونکہ انسان کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہ دنیا کمرہ امتحان کہلائی. یہاں ہم نے اپنا ٹیسٹ لکھنا ہے. جیسے کوئی بچہ اگر کوئی امتحان دے رہا ہوتا ہے جب تک وہ اپنا پیپر ہینڈ اوور نہیں کرتا اس وقت تک اس کو آلٹریشن کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جب وہ پیپر ہینڈ اوور کر دیتا ہے اب وہ آلٹریشن نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل ایک آرٹیکل ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور اس کے آخر میں اگر ہم اس کے سپیلنگ چیک کر لیں گرامر چیک کر لیں اس کو کریکٹ کر لیں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو سبمٹ کر دیا تو اب اس کی آلٹریشن نہیں کر سکتے. ہم ہر روز اپنے نام اعمال کو جو ہے لکھ رہے ہیں اور یہ ساری زندگی کے دن اور رات یہ اعمال نامہ میں لکھے ہوئے ہیں. ہاں ہم اس میں چاہیں تو جو ہے اس کو چیک کر لیں کہ جہاں جہاں غلطیاں ہیں ہم ان لائنوں کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اپرچونٹی دی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس امت کے لیے خاص طور پر لاسٹ مومنٹ جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نام اعمال کو ٹھیک کر لیں. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور اپنے نام اعمال کو ٹھیک کر لیں. ابھی تو اس کا وقت ہے. جب یہ وقت نکل گیا پھر پچھتائیں گے. یعنی موت تک یہ وقت موجود ہے اور ہم اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں اور اپنے نام اعمال کے اندر کیے ہوئے برے اعمال کی توبہ کر لیں. آئندہ نیکی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. اللہ بہت رحیم اللہ بہت کریم. تو ماشاءاللہ یہ گریٹ اپرچونٹی ہے. اس کو اویل کرنا چاہیے. اب ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کے چار بڑے دشمن ہیں کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ دشمن بھی کہہ سکتے ہیں امتحان بھی کہہ سکتے ہیں مشکل چیز بھی کہہ سکتے ہیں. مختلف ناموں سے اس کو سمجھ جا سکتا ہے لیکن ہم نے اس کا نام دشمن کہا کیونکہ دشمن جو ہے وہ انسان کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے. اب ہم اس دنیا میں آئے. دنیا اٹ سیلف جو ہے ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. یہ انسان کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے. ہم اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جو ہے پچھلے بیانات میں پڑھا تھا سمجھا تھا. دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ابلیس جو جس کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے سمجھ چکے اس کو بھی زمین پر اتار دیا. پہلی بات زمین پہ رہتے ہوئے دنیا کے اندر کیونکہ دنیا میٹھی بھی ہے اور کلرفل بھی ہے और उसके साथ साथ शैतान जो डिसीविंग है, वसवसा डालता है, इंसान को मिसगाइड करता है, तो ये दूसरा उसके लिए टेस्ट हो गया। और शैतान अल्लाह ताला का भी दुश्मन और इंसानों का भी दुश्मन, और ये दुश्मन सिर्फ आमाल का दुश्मन नहीं है बल्कि ईमान का दुश्मन है, क्योंकि वो चाहता है हर इंसान जहन्नम में चला जाए, इसलिए ये बहुत बड़ा दुश्मन है। लिहाजा इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये दुश्मन जो है इससे हमें कैसे बचना है। तो इसके मुतालिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो तीसरे दुश्मन के बारे में है, और वो ये है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ये मखलूक के साथ रहता है, इसके रिश्ते होते हैं, जानवरों के भी रिश्ते होते हैं, लेकिन उनके रिश्ते बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। ऑर्डिनरी फीलिंग और जो है उनके दरमियान जो बॉन्डेज होती है वो टेम्परेरी होती है। छोटा सा बेबी किसी भी जानवर का पैदा होता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी लाइफ खुद गुजारता है, वो अपने पेरेंट्स के घर विजिट करने नहीं जाता, अपने बहन भाइयों को मिलने नहीं जाता, बल्कि उसको याद भी नहीं होते, उसको पता भी नहीं होता, और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। बस वो जब भी इंडिपेंडेंट हुआ तो बस वो जो है अपनी जिंदगी गुजारने लग गया। लेकिन इंसान जो है वो डिफरेंट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का इम्तहान जो रखा है उसमें इंसानों के साथ जो डीलिंग है उसको भी चेक किया जाता है। अगर इसको चेक किया जाएगा तो अब ये जो है एक टेस्ट बन जाएगा कि उसने एक बच्चा जब किसी माँ बाप के पास पैदा होता है तो वो माँ बाप का अदब करता है, माँ बाप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चे की सही तरबियत करते हैं, बहन भाइयों के साथ डील करना है क्योंकि वो एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं, और इसी तरह हर घर के साथ एक नेबरहुड भी होता है और उस नेबरहुड के साथ भी रहना है, फिर इसी तरह लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करना है और लॉ ऑफ द नेचर यानी अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन और जो है डिवाइन इंफॉर्मेशन सब के ऊपर जो है इंसान को अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना है, और ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए या तो ये सारी सिचुएशन इंसान को डिफीट कर देगी या इंसान इस सारी सिचुएशन से सक्सेसफुली जो है इस दुनिया से जब जाएगा तो वो बहुत सारे जो है नेक आमाल लेकर जाएगा। इसलिए कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनको करने का हुक्म दिया गया और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनसे मना कर दिया गया। इंसान का जो लफ्ज है उन्स से बना है, उन्स कहते हैं जिसमें तबीयतों के आपस में मानूस हो जाना, यानी इंसान जब किसी से मिलता है तो उसको दूसरे के साथ जो एक अट्रैक्शन सी फील होती है, कंफर्ट फील होती है, वो इसलिए होती है कि वो इंसान है। इंसान हमेशा इंसानों के साथ खुश होते हैं। अगर आप अकेले कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे भाई मेरे साथ कोई और चला जाए। शरीयत ने भी हुक्म दिया कहीं पर भी अगर ट्रैवल करना है तो दो आदमी की जमात बना लो, जब दो आदमी होंगे आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे और वो सफर आसान हो जाएगा। तो भाई जब भी दो बंदे इकट्ठे होते हैं तो यूं समझें दो बंदों की खैर डबल हो गई, उनके आपस में इकट्ठे होने से उनके अंदर जो खैर थी वो अब जो है मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ काम एक बंदा कर लेता है, कुछ काम दूसरा बंदा कर लेता है, हर आदमी के अंदर एक जैसी स्किल्स नहीं होती। लिहाजा जब दो बंदे मिलकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो शेयरिंग की वजह से, डिफरेंट एबिलिटीज की वजह से वो कामों को डन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, और जो है उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो यानी दो बंदे जब इकट्ठे हुए तो खैर डबल हो गई, इसी तरह जब दो बंदे इकट्ठे होते हैं तो दोनों का शर अगर हम देखें, क्योंकि हर इंसान के अंदर खैर भी है शर भी है, तो अब शर भी डबल हो गया। तो मालूम हुआ कि अगर तो ये खैर को शेयर करेंगे तो खैर डबल है, और अगर ये शर को शेयर करेंगे तो शर भी डबल है। तो अब लोगों के इकट्ठे होने से प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए और लोगों के इकट्ठे होने से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व भी हो गए। अब डिपेंड करता है कि इंसान जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से अट्रैक्ट करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है और अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारता है। अब इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पहली बात यह है कि कहते हैं इन कता अनिल मखलूक, यानी मखलूक से कट जाओ, सारी मखलूक से अपने आप को डिटैच कर दो। कितनी अजीब सी बात है। अभी हमने कहा कि भाई इंसान तो इंसान के साथ मिलकर रहता है, लेकिन यहां यह समझाया जा रहा है कि सारी मखलूक से कट जाओ, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि अल्लाह के लिए सारी मखलूक के साथ जुड़ जाओ। अब अगर हम यूं करेंगे तो इसको कहेंगे तबत्तल अख्तियार करना, अल्लाह से जुड़ जाना, मखलूक से कट जाना, मखलूक से कट जाना और अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाना, अल्लाह के लिए मखलूक के साथ जुड़ जाना। सुभान अल्लाह। अब इसमें एक रूल क्या आ गया, रूल यह है कि आपने सारे इंसानों के साथ जो है डील करना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक डील करना है। आपने अपने मुताबिक नहीं डील करना, अपनी आइडियोलॉजी पे नहीं चलना। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतवत्तल इलैहि तबतीला, और जिक्र कर अपने रब के नाम का और उसकी तरफ तबत्तल अख्तियार कर। यानी इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ ले और अल्लाह के नाम से सबके साथ जुड़ जाए। अब इंसान अगर सोचना शुरू कर दे कि भाई मेरे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, क्या जरूरत है। आप आसान सी बात है, ये सोचें अल्लाह ताला ने इनको मेरा माँ बाप बनाया और इन्हीं को राजी करने पे मुझे सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला मुझे इनाम देंगे। कितना आसान फार्मूला है। अब आपको बैठ के अपने माइंड में प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फेयर अनफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, उनके सामने उफ नहीं करो, उनको आराम से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर माँ बाप ने कोई डिमांड ऐसी की कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, तो अब आपने माँ बाप की जो इज्जत करनी थी वो तो अल्लाह के लिए करनी थी, और माँ बाप की डिमांड अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, तो अब आपने फिल्टर कर दिया कि आप माँ बाप के साथ डील करते रहेंगे लेकिन आप अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। एग्जैक्टली इसी फार्मूले को हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान यूज कर लेते हैं कि आप हस्बैंड एंड वाइफ, इनका ताल्लुक निकाह से होता है। अब निकाह की वजह से, निकाह की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आपने 100% एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह ताला राजी होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। बीवी ने खावंद की बात माननी है, खावंद ने बीवी को खुश करना है। अब अगर इन दोनों में से किसी ने भी कोई बात ऐसी कही है कि जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ती हो, बीवी कहने लग जाए मुझे तो ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से चाहिए, कहां से पैसा आएगा, बस मुझे तो चाहिए। अब हस्बैंड सोचने लग जाए मैंने तो अपनी बीवी को खुश करना है, हलाल है हराम है, मैंने तो कमाना है। तो अब ये प्रोसेस करने की जरूरत है, फिल्टर करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह के हुक्म को तोड़े बगैर आपको जितना माल मिले आप बेशक शेयर करें, घर में ले आए, बीवी पे खर्च करें, माशाल्लाह वो भी खुश। और अगर खामंद जो है हराम का पैसा घर लेकर आए, बीवी को भी चाहिए कि भाई वो कहे कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए। सिमिलरली आप बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, तो अब आपने ख्याल रखना है। तो मालूम हुआ कि ये जो है अल्लाह के नाम से हमने ताल्लुक को जोड़ लिया। माँ बाप से मोहब्बत अल्लाह की वजह से है ना, बीवी बच्चों से मोहब्बत अल्लाह के लिए, मुसलमान भाई बहन के साथ मोहब्बत अल्लाह की वजह से, इसी तरह पीर और उस्ताद के साथ जो मोहब्बत होती है वो भी अल्लाह की वजह से होती है। बाज़ लोगों को यह भी एतराज होता है कि भाई अपने शेख से बड़ी मोहब्बत करने लगते हैं। तो भाई शेख से मोहब्बत इसलिए होती है कि अल्लाह ताला से वो मोहब्बत का तरीका सिखाता है, नबी सल्लम का तरीका सिखाता है। तो जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सिखाता हो, हम उससे मोहब्बत क्यों ना करें भाई। ये तो सबसे अफजल मोहब्बत है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर रहा हो। अब यही मोहब्बत अगर माँ बाप सिखा रहे हैं तो हम उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, डबल मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह का हुक्म भी है और ऊपर जो है वो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत सिखा रहे हैं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को अल्लाह रसूल अल्लाह की मोहब्बत सिखाते हैं, हम उनसे भी बहुत मोहब्बत करेंगे, माशाल्लाह एक दूसरे से खूब मोहब्बत करेंगे, डबल मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों जो है वो एक तो खुद मोहब्बत के हकदार हैं और दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब हम ज्यादा मोहब्बत करेंगे। तो मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की निस्बत से तो सारी मोहब्बतें जायज और इसका अजर भी मिलेगा। तो अब हम बात समझ गए कि मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के नाम से करनी है ना, और जो है अपने नफ्स की वजह से मोहब्बत नहीं करनी। जो बंदा इस तरह से मोहब्बत करेगा वो नाजायज मोहब्बतों से बच जाएगा और जायज मोहब्बतें उसको मिल जाएंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में आया है, मन अहब्ब लिल्लाही, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, वह अब गजा लिल्लाही, और अल्लाह के लिए किसी से बुग्ज रखा, यानी अल्लाह की वजह से जो है उसने बुरी चीजों से बुग्ज रखा, वह आता लिल्लाही, और अल्लाह के लिए किसी को अता किया, वह मना लिल्लाही, और उसने अल्लाह के लिए ही रोका। तो फरमाया फकद इस्तकमल ईमान, तहकीक इसने ईमान को मुकम्मल कर लिया, ये उसकी यानी ईमान का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। यानी ईमान क्या है? अल्लाह से ताल्लुक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक। या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह ताला ईमान वालों से कहते हैं कि तुम जो है ईमान ले आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के लिए जब ये सब चीज करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इसका ईमान मुकम्मल हो गया। हदीस पाक में आया है, क्यामत के दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साये में होंगे। जिस दिन अर्श के साया के सिवा कोई दूसरा साया ना होगा, उनमें से 2 वो होंगे जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। देखा कितनी इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। अब मोहब्बत तो इंसान करता ही है, जालिम से जालिम इंसान भी किसी से मोहब्बत करना चाहेगा। जैसा भी कोई इंसान हो, गरीब है, अमीर है, कमजोर है, ताकत वाला है, मोहब्बत इंसान को चाहिए। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए इस मोहब्बत को करेगा तो ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। और याद रखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। कैसी प्यारी बात है कि इंसान क़यामत के दिन भी उनके साथ जमा कर दिया जाएगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा। अच्छे लोगों से मोहब्बत करता होगा, अच्छे लोगों के साथ जमा कर दिया जाएगा, और बुरे लोगों के साथ मोहब्बत करता होगा तो अल्लाह ताला उसका मामला भी बुरे लोगों के साथ कर देंगे। कई लोग कहते हैं मैं तो बुरा नहीं हूं, बस मेरे दोस्त बुरे हैं, या मेरे दोस्त जैसे भी हैं मुझे उनका इफेक्ट नहीं होता। ये कितनी अजीब सी बात है, आपको इफेक्ट क्यों नहीं होता? ये हदीस पाक बता रही है, अलमरु मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन तुम उन्हीं के साथ कर दिए जाओगे, तुम्हें इफेक्ट कैसे नहीं हो रहा? बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है। तो आदमी को अपने दोस्तों को सेलेक्ट करते हुए सोचना चाहिए कि मैं किन के साथ हैंग अराउंड कर रहा हूं। सहाबा कराम कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहते थे, जब उन्होंने यह हदीस पाक सुनी तो वो बहुत खुश हुए کیونکہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو وہ اپنی زندگی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھے، بلکہ ان کو اس بات کا غم بھی تھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اس مقام پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھیں گے؟ زندگی میں تو ہم ان کے کمپینین ہیں، اور مرنے کے بعد اگر ہم ان کے کمپینین نہ بن سکے، ان کی صحبت میں نہ رہ سکے، تو اس جنت کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ لیکن جب یہ حدیث پاک آئی تو اس وقت صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. یاد رکھیں یہ حدیث پاک اب بھی انہی فضائل کے ساتھ موجود ہے. آج بھی اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو الحمدللہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ارشاد کو سنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کرنے کی کوشش کی، اور ہم ان کی اولادوں کو قیامت کے دن ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے اور ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کو وہی درجہ عطا فرما دیں گے. مجھے امید ہے کہ سب نے بہت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کے فرمان کو سنا ہوگا. یعنی دیکھیں، اگر ہمارے بڑے نیک ہوں گے اور نیک اعمال کریں گے اور ہماری اولادیں بھی جو ہے اسی طرح نیک بن جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر معاملہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس اولاد کو بھی ان کے ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، حالانکہ ان کی اولاد میں وہ نیک اعمال نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو پورا کر دیں گے اور جنت میں ان کو جو درجہ عطا فرمانا ہے اس میں کمی بھی نہیں کریں گے. اب دیکھیں جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی اولاد کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح تقوی طہارت اختیار کریں، نیک بنیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بھی ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے. اب اسی طرح علماء اور مشائخ کے جو شاگرد ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں، وہ بھی تو روحانی اولاد ہوتی ہے. اگر وہ نیک اعمال کریں گے، اسی طرح کوشش کریں گے جس طرح ان کے بزرگ کرتے ہیں، ان کے شیخ کرتے ہیں، ان کے علماء کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال میں کمی کے باوجود ان کو وہی درجہ عطا فرما دیں گے. تو اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. اب جس بندے کو اپنے شیخ کے ساتھ سچی اور کھری محبت ہوگی، اپنے نیک ماں باپ کے ساتھ محبت ہوگی اور وہ ان کے طریقے سے زندگی کو گزاریں گے، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری. اور وہ اس طرح سے جو ہے یہ سمجھیں کہ ہمارے مشائخ اور ہمارے ماں باپ کیونکہ اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جس طرح کی نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، جو تقوی طہارت ان کی زندگی میں ہے، وہ ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن کیونکہ ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ہمارے شیخ کے ساتھ ملا دے گا، اور ہم نے اپنے شیخ کی زبانی یہ بات بھی سنی کہ وہ اپنے شیخ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس نسبت سے وہ بھی اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شیخ سے ملا دیں گے. اور اسی طرح ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ ہمارے شیخ کے جو شیخ ہیں وہ بھی اپنے شیخ سے بہت محبت کرتے تھے اور امید کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر ہم اسی طرح دیکھتے چلے جائیں تو کرتے 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 یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی نہ کسی صحابی تک جا پہنچتا ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا جڑتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشقوں کے سردار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. لہذا اس حساب سے جو ہے ہمیں خوشخبری ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے, اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور پھر قیامت کے دن بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے افضل اور سب سے قریب ہوں گے. تو اس اعتبار سے دیکھو یہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان نسبتوں کی برکت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ پا لیں گے. تو لہٰذا دیکھیں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے, مگر الحمدللہ آج ہم اپنے مشائخ کی محبتوں کے صدقے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے جگہ نصیب فرما دے گا. اب صحبت کے معاملے میں قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ایک چیز ایسی جس پہ نظریں جمانے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم اس کو دیکھو, اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا گیا کہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, فرمایا اور تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نتھی رکھ جو صبح و شام اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور تو اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر مت ہٹا. یعنی اللہ والوں کی صحبت میں جب آئیں تو آپ خوب جی بھر کے ان کو دیکھیں اور ان کی جو ہے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں, ان کے حکموں کو مانیں, ان سے اپنی نظریں مت ہٹائیں. تو اگر تم نے نظر ہٹا لی تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو ایسے ہی ہوگا جیسے تم دنیا کے چاہنے والے بن گئے, دنیاوی زیب و زینت کو چاہنے والے بن گئے, تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے چہروں پر نظر جمانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتے ہیں. ان کا چہرہ مرر کی طرح ہوتا ہے کہ انسان اس میں اپنا فیس دیکھ لیتا ہے, ان کو اپنا آپ نظر آتا ہے. جب کسی اللہ والے کو انسان دیکھتا ہے تو اس کو اپنی برائیاں پتہ چلنے لگ جاتی ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ والوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں, اور عام طور پر وہ جو کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا گندا نفس ہوتا ہے جو وہ اللہ والے کو دیکھنے سے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ مرر کے سامنے آئیں تو اگر آپ کے فیس کے اوپر اگر کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ کو وہ نظر آ جائے گی. اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اللہ والے کو جب دیکھ کر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے فیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اپنی اس حالت سے اپنی ڈائیگنوسس کر سکتے ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے. اور جو अल्लाह वालों को मोहब्बत से देख रहे होते हैं, उनकी तारीफें कर रहे होते हैं, तो भाई वो भी ऐसे ही होता है कि उनके दिल में जितनी अल्लाह की मोहब्बत होती है उतना वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह वाले इतने नेक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि ये अच्छाई उनकी अपनी होती है। अल्लाह वालों का हाल तो भाई अल्लाह ही जानता है कि वो कितने नेक होते हैं और किस मकाम पे होते हैं, किस हाल में होते हैं, लेकिन बंदा अपने अपने हिसाब से उसको एस्टिमेट कर रहा होता है। ये उसकी अपनी असेसमेंट होती है, उसकी अपनी रिफ्लेक्शन होती है, इसमें अल्लाह वाले का कोई भी हिस्सा नहीं होता। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के एक शागिर्द थे, वो कहते थे जब मेरे दिल पे कोई डार्कनेस हो जाती थी, जुल्मत हो जाती थी, तो मैं अपने शेख के चेहरे को जब देखता था अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे क्लीनलीनेस दे देते थे। दो चीजों के बारे में कहा कि इनकी तरफ देखना भी नहीं है। अब देखें, मखलूक जो है वो भी दुश्मन है, और वाकई अगर आप मखलूक जो है उसकी तरफ देखेंगे, और उनमें से एक चीज कुल लिल मुमिनीन यगुज़ु मिन अबसारिहिम, ईमान वालों ईमान वालों को फरमा दीजिए कि आप अपनी नजरें नीची रखें, यानी नामहरम को ना देखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और स्पेशली आज जब नामहरम जो है वो बेहतियाती के साथ जो है बाजारों में मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, औरतों को चाहिए मर्दों को ना देखें, मर्दों को चाहिए औरतों को ना देखें। तो अपनी निगाहें नामहरम से बचानी है, अल्लाह वालों को देखना है और जो है नामहरम की तरफ नहीं देखना। अच्छा, इसी तरह माल पैसा अगर अल्लाह ताला ने किसी को दे दिया है उसके बारे में भी मना किया, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही, ए महबूब उनको जो कुछ भी मिला है आप इस पर निगाह ना डालें। यानी लोगों की बिल्डिंगें देखने की जरूरत नहीं है, लोगों की गाड़ियां देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या गर्ज है भाई। अल्लाह ने जो हमें दिया हुआ है, जिस घर में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेहनत करें, बेशक इससे अच्छे घर बनाएं, अल्लाह से मांगें, आपकी जरूरत है जरूर इससे अच्छा बनाएं, लेकिन हम दूसरों को क्यों देखें। भाई भाई की चीजों को देखता है, बहन बहन की चीजों को देखती है, भाई इसकी क्या जरूरत है। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया वही काफी। तो इधर उधर जो है देखने से दिल में हसद आता है, और हसद आएगा तो इंसान के दिल फटेंगे, इंसान को गुस्सा आएगा, एक दूसरे से लड़ाइयां होंगी, लिहाजा शरीयत ने मना किया हुआ है मत देखो। तो दो चीजें जो इस मखलूक के अंदर जो है वो दुश्मन है, वो क्या है, जमाल और माल। तो अगर हम इसको इसकी तरफ निगाह ही नहीं डालेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है मखलूक के इन फितनों से बच जाएंगे। अब ईमान वालों के साथ भाईचारा और दोस्ती इंतहाई जरूरी है, यह भी याद रखें, और इसके लिए एक दूसरे को तारफ करें, वजअलनाकुम शुउबन वकबाइल लितआरफु, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें, एक दूसरे से मिलें, सोशल जिंदगी गुजारें, क्योंकि इससे फायदा होगा। आपको क्या मालूम आप किसी से हैंडशेक करेंगे वो नेक होगा, क्यामत के दिन अल्लाह ने अगर उसकी बख्शिश कर दी और वो आपको जानता होगा, आपसे मोहब्बत करता होगा, तो वो आपकी भी शिफात कर देगा, आपकी भी बख्शिश हो जाएगी। तो दीनी भाई जो है इनसे मोहब्बत रखना, इसकी अहमियत, इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक ईमान वाले सब भाई भाई हैं। तो ये फीलिंग्स डेवलप करनी चाहिए, ईमान वालों के साथ मोहब्बत रखना है, ये बहुत ही फायदे वाली चीज है। हाँ, बुरे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जो फासिक लोगों को दोस्त बनाएगा, गुनाहगारों को दोस्त बनाएगा, वो भी गुनाहगार हो जाएगा। जो नेक लोगों को दोस्त बनाएगा वो खुद नेक बन जाएगा। अलमरु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिका, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। नौजवान समझते हैं नहीं मेरा मामला अपना है और दोस्ती में जिससे चाहे कर लूं, सबके लिए अपने आप को ओपन किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आपका लोगों को जानना एक और बात है, लेकिन दोस्त बनाना एक और चीज है। बस तुम में से हर कोई देखे कि वो किसको दोस्त बना रहा है। हदीस पाक है, हमें बता रहा है कि दोस्ती किस तरह से करते हैं। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत की कि ऐ मेरे बेटे, 5 बंदों के साथ हरगिज दोस्ती ना करना, बल्कि रास्ते में चलते हुए, यानी अगर आप यूं समझे कि ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और आपके आप फॉर एग्जांपल प्लेन में हैं और नेक्स्ट आपकी सीट है, आपने उसमें भी ख्याल रखना है कि जो है उनके साथ अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वहां पर भी अवॉइड करना। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने हैरान होकर कहा कि अब्बा जान, वो कौन से 5 बंदे हैं कि जिनके साथ मैं सीट भी शेयर ना करूं, उनके साथ रास्ते में भी ना चलूं, इतना एहतियात करूं। उन्होंने कहा एक वो बंदा जो झूठ बोलता हो, झूठ बोलने वाले के पास से कभी भी दोस्ती ना बनाना, क्योंकि झूठा आदमी जो है वो मिसगाइड करता है, वो सही बात को गलत कर देता है, गलत बात को सही कह देता है, टोटली अपोजिट कर देता है क्योंकि झूठ बोल रहा है वो। दूसरा वो बंदा जो फासिक और फाजिर होता है, फासिक और फाजिर कहते हैं वो बंदे जो अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं करते, उसको कहे कि भाई अल्लाह का हुक्म है, वो कहते हैं बस आई हैव टू इंजॉय, ऐसे बंदे से दोस्ती नहीं करते होते। कहा कि फासिक और फाजिर जो है वो यूं समझें कि फॉर 1 पैनी या 1 पैनी से भी कम जो कीमत है ना, उस पर भी आपको सेल कर देगा। अब जो उनके बेटे थे वो पूछने लगे कि 1 पैनी तो चलो समझ आती है उसकी कोई वैल्यू है, 1 पैनी से कम की क्या वैल्यू है कि उस पर भी वो आपको सेल कर देगा। तो उन्होंने कहा कि उसको अगर ये फीलिंग हो कि मुझे 1 पैनी भी मिल गई ना, तो इस होप पर वो आपको सोल्ड आउट कर देगा, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्मों की परवाह ही नहीं करता। तो तीसरा आदमी वो होता है जो बेवकूफ होता है, जो बेवकूफ आदमी होता है उससे भी बचना, उसको दोस्त ना बनाना। क्या वजह? कि वो तुझे अगर फायदा पहुंचाना चाहेगा तो वो बेवकूफी की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए उसके साथ भी दोस्ती नहीं करना। और चौथा आदमी बखील होता है, जो कुछ स्पेंड ही नहीं करना चाहता, तो ऐसे बंदे के साथ भी दोस्ती ना करना, क्योंकि जब तुम नीड में होगे वो तुम्हें छोड़ देगा। फ्रेंड इज इन नीड, फ्रेंड इज इन नीड। तो फ्रेंड तो वो होता है ना जो वो फ्रेंड इज इन नीड, फ्रेंड इज इन नीड। हाँ, उल्टा हो गया है ना। तो बात ये हुई कि अब वो जो फ्रेंड है वो क्योंकि बखील है तो वो इस जो है ना जरूरत के वक्त में छोड़ देगा। और पांचवा बंदा वो जो सिला रहमी नहीं करता, कतअ रहमी कर देता है, जो रिश्तेदारों के साथ नहीं रखता वो तुम्हारे साथ क्या रखेगा। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि भाई हमने किस किस्म के दोस्त बनाने और किस किस्म के दोस्त नहीं बनाने। जहां ये बताया जा रहा है कि अच्छे दोस्त बनाए, वहां जो है ये भी बात समझ में आ गई कि बुरे दोस्त नहीं बनाने, अच्छी सोबत में रहना है और बुरी सोबत से बचना है। तो आज हमने इस तीसरे दुश्मन के बारे में पढ़ा समझा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हम इसको समझें और अपनी जिंदगी को जो है अपने दुश्मनों से बचाएं और जो है आखिरत की कामयाबी को पाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।